आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में 31 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच यूनिटी मार्च का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरदार पटेल अखंड भारत के हैं शिल्पी। मुख्यमंत्री ने की गोमती पुनर्जीवन मिशन की घोषणा। पीलीभीत से गाजीपुर तक गोमती के प्रवाह क्षेत्र को बनाया जाएगा अविरल और निर्मल। वित्तीय अनुशासन के मामले में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार राजस्व बचत की स्थिति में है प्रदेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सहजन की खेती से महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली लखनऊ की डॉक्टर कामिनी सिंह की सराहना। 1000 से अधिक महिलाओं को जोड़ चुकी हैं डॉक्टर कामिनी। और अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। वहीं 31 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस आयोजन में यूपी के खिलाड़ी, कलाकार और युवा भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं।
आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत, तो विकसित भारत की इस आधारशिला को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 80 लोकसभा सीटों पर ये कार्यक्रम होंगे और सभी 75 जनपदों के 5-5 युवा सरदार साहब की जन्मभूमि में जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उनको करमसद से लेकर के केवड़िया तक 150 किलोमीटर की इस पद यात्रा में देश भर से आए हुए युवाओं से मिलने और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का भी एक अवसर प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पदयात्रा से पहले स्थानीय स्तर पर सरदार पटेल के जीवन पर आधारित कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कल मुंबई में आयोजित सरदार पटेल रन फॉर यूनिटी मैराथन की शुरुआत की। इस मैराथन में मुंबई के हजारों युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भारत एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमें फिट इंडिया मुहिम के साथ जुड़कर अपने भारत को फिट बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गोमती केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और जीवन धारा की प्रतीक है। गोमती टास्क फोर्स के साथ कल लखनऊ में हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने इस मिशन की विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोमती में एक भी बूंद सीवरेज न गिरे, इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि नदी किनारे बसे अवैध बस्तियों में घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए, जिससे गोमती के तटों पर स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन का दायरा पीलीभीत से गाजीपुर तक गोमती नदी के संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र को कवर करेगा, जिससे गोमती अपने पूरे विस्तार में स्वच्छ, अविरल और निर्मल रूप को फिर से प्राप्त कर सके। गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन आस्था, पर्यावरण और विकास से संगम का प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री ने जनता से इसमें सहभागिता की अपील की। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम जल जीवन मिशन हर घर नल योजना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के हर घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा तय की गई है। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अवधि तक कनेक्शन लगाने के साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट भी करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा प्रकाशित राज्य के वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्तीय अनुशासन और निवेश के मामले में देश के सभी 28 राज्यों में अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 103,237 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया, जो देश में सर्वाधिक है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से अधिक रही हैं, यानी प्रदेश राजस्व बचत की स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा पिछले महीने की 22 तारीख को की थी। इसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर एक रिपोर्ट।
नई जीएसटी सुधार उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। यह सुधार राज्य के पारंपरिक शिल्प और कपड़ा क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, लाभान्वित होंगे, क्योंकि 2,500 रुपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगी। इसी तरह लखनऊ के चिकनकारी जैसे हस्तकढ़ाई की कृतियां उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे, क्योंकि इस पर सिर्फ 5% स्लैब रखा गया है, जिससे इन शिल्पों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हजारों कारीगरों को राहत मिलेगी। वहीं फिरोजाबाद के जीआई टैग कार्ड शिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कांच के बर्तनों और चूड़ियों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। समर्थ के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर कामिनी सिंह मोरिंगा यानी सहजन की खेती के माध्यम से प्रदेश की महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनके इस कार्य के चलते उन्हें नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और संवाद करने का मौका मिला। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए उनसे मोरिंगा की खेती की बारीकी को समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से डॉक्टर कामिनी सिंह ने एफपीओ के माध्यम से 1,000 से अधिक महिला किसानों को जोड़कर एक नई शुरुआत की है। उन्होंने इसकी खेती के लिए उन्हें प्रेरित किया और इसके जरिए 1.5 दर्जन उत्पाद बनाकर बाजार तक उनकी पहुंच बनाई। महिलाएं मोरिंगा की खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का भी काम करती हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प सेवा केंद्र द्वारा महोबा में कल से 6 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें गौरा पत्थर से जुड़े शिल्पकारों को उद्यमिता और विपणन की बारीकियां सिखाई जाएंगी। वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि सरकार हुनरमंद हस्तशिल्पियों की पहचान करके उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ रही है।
इस उद्यमिता विकास कार्यक्रम में हम 20 हस्तशिल्पियों को उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मूलभूत बातें हैं, जैसे चाहे वह ऑनलाइन मार्केटिंग हो, चाहे वह उद्यमिता विकास की अवधारणा के बारे में हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, जीएसटी हो, बैंकिंग हो, अकाउंटिंग हो, इत्यादि जितने भी पहलू हैं जो इनके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमारे 6 विषय विशेषज्ञ अपने क्रमागत रूप में उनको विस्तृत विवरण देंगे, जिससे हमारे सभी हस्तशिल्पी लाभान्वित होंगे और अपने रोजगार को अपने दम पर कर सकने में कुशल और सक्षम बनेंगे।
अयोध्या में आयोजित प्रसिद्ध रामकोट परिक्रमा में कल बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। परिक्रमा का नेतृत्व हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी रमेश दास जी महाराज ने किया। उनके सानिध्य में श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारों के साथ परिक्रमा पूरी की, जिसमें 23 जनपदों से आए गायत्री शक्तिपीठ के श्रद्धालुओं के साथ दक्षिण भारत से श्री राम भक्तों ने भी अपनी हाजिरी लगाई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में 31 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच यूनिटी मार्च का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरदार पटेल अखंड भारत के हैं शिल्पी। मुख्यमंत्री ने की गोमती पुनर्जीवन मिशन की घोषणा। पीलीभीत से गाजीपुर तक गोमती के प्रवाह क्षेत्र को बनाया जाएगा अविरल और निर्मल। वित्तीय अनुशासन के मामले में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व बचत की स्थिति में है प्रदेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सहजन की खेती से महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली लखनऊ की डॉक्टर कामिनी सिंह की सराहना। 1,000 से अधिक महिलाओं को जोड़ चुकी हैं डॉक्टर कामिनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।